नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा।
मैं हूं विनीता। श्रोताओं, इस सप्ताह भी हम आपसे 1 से 15 अगस्त के अंक को लेकर चर्चा को जारी रखते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला और वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट विकसित भारत के विराट व निर्णायक संकल्प को साकार करने की निरंतरता का प्रतीक बना। दूरदृष्टि से पेश किए गए अभूतपूर्व ऐतिहासिक आम बजट ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त किया है, जिसका उद्देश्य है अमृत काल में सुदृढ़ भारत की ऐसी तस्वीर को आगे बढ़ाना जहां निरंतरता के साथ नीतिगत पहल से बने इंफ्रास्ट्रक्चर को गति, रोजगार के अनगिनत नए अवसर के साथ विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा। आम बजट बेहतर विकास और उज्जवल भविष्य के साथ ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। अमृत काल में बना संसद भवन में पेश आम बजट न केवल 5 वर्ष की दिशा तय कर रहा है, बल्कि शताब्दी वर्ष का ब्लूप्रिंट बन गया है। इस 23 जुलाई को पेश हुए आम बजट में रोजगार को विशेष महत्व दिया गया है और कभी वित्तीय लेखा जोखा का दस्तावेज बनकर हर वर्ष पेश होने वाला आम बजट एक अनुष्ठान से ऊपर उठकर जन भागीदारी का सशक्त माध्यम बन सरकार की ऊर्जा को व्यापक विकास की प्राथमिकताओं से कस रहा है। केंद्र सरकार ने भविष्य के लिए आम बजट में भले ही 9 प्राथमिकता निर्धारित की है, लेकिन इसी आम बजट पर आधारित हमारी आवरण कथा में हमने इसे 18 क्षेत्रों में बांटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 18वीं लोकसभा का पहला बजट है और 18 के अंक का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। ये 18 क्षेत्र हैं: कर सुधार, अन्नदाता किसान, युवा शक्ति, नारी शक्ति, सामाजिक न्याय, जनजातीय सशक्तिकरण, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, पूर्वोदय से भारत उदय, पर्यावरण संरक्षण, रक्षा में आत्मनिर्भरता, बिहार आंध्र को न्याय, शहरी विकास इनोवेशन, नेक्स्ट जेनरेशन सुधार और पर्यटन विरासत।
देश के विकास में किसानों के योगदान को देखते हुए उनकी आय बढ़ाने से लेकर समस्याओं के समाधान तक के लिए सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। सरकार ने प्राकृतिक खेती, कृषि अनुसंधान और टेक्नोलॉजी से लेकर कैसे किसानों को फल और सब्जी उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पर तेज गति से काम करने का निर्णय लिया है। अब सरकार ने तय किया है कि देश के किसानों के नेतृत्व में राष्ट्र दलहन और तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनेगा। भारत की बढ़ती ताकत देश की युवा शक्ति है और इसी युवा शक्ति को और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र की सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर देना सरकार की पहचान रही है। बजट में सरकार की ओर से ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे देश में करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों के लिए इंटर्नशिप योजना, इस तरह के निर्णय से युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
साथियों, इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारा बहुत अधिक फोकस स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर हमने केंद्रित किया है। आज देश के युवाओं में एक मिजाज बना है कि अपने दम पर कुछ करके दिखाना है। इसमें मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया अभियान हो, स्टैंडअप इंडिया हो, युवाओं की बहुत मदद कर रही है। मुद्रा योजना से लगभग मदद लेकर के 8 करोड़ से ज्यादा साथियों ने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है। देश में आज करीब 1,40,000 स्टार्टअप्स हैं और इनमें लाखों युवा काम कर रहे हैं, नए नए साहस कर रहे हैं। इस बजट में भी जिस 2,00,000 करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई है, चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है। इसका सीधा लाभ 4 करोड़ से अधिक युवाओं को मिलने का ये पीएम पैकेज होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव है।
महिला और बच्चियों के विकास से लेकर महिला के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ने की परिकल्पना कर केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट है। आधी आबादी को उनका अधिकार और सम्मान देने में इस सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नारी वंदन अधिनियम से लेकर समाज में महिलाओं के अधिकार को बढ़ाने के लिए मालिकाना हक तक और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस बार के बजट में भी महिला संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। समाज के वंचितों और हाशिए के लोगों के उत्थान के लिए भारत सरकार ने पिछले 10 वर्ष में जो प्रयास किए हैं उसकी प्रगति योजनाओं की समीक्षा करने पर साफ झलकती है। अपने ट्रैक रिकॉर्ड को आधार बनाकर केंद्र सरकार ने सामाजिक आर्थिक एवं डिजिटल खाई पाटने और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में हर किसी को सशक्त बनाने वाली बहुत सी घोषणाएं की है।
जनजातीय समाज का उत्थान और उनका सशक्तिकरण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। इन प्राथमिकताओं की झलक 23 जुलाई को संसद में पेश बजट में भी देखने को मिली। इस बजट में सरकार ने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान से 63,000 गांवों के लगभग 5 करोड़ जनजातीय बहन भाई लाभान्वित होंगे। इससे न सिर्फ ये गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे बल्कि उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से वो आदर्श ग्राम भी बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई देश की आत्मनिर्भरता का आधार बन रहे हैं, जिसके लिए सरकार न सिर्फ आर्थिक सहायता का रास्ता आसान कर रही है बल्कि नियम और विनियम भी सरल बना रही है। इस बजट में एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग, विशेषकर श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट भाषण में कहा कि एक पैकेज बनाया गया है जिसमें एमएसएमई के लिए वित्त पोषण, विनियामक परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल किया गया है।
शिक्षा के महत्व को केंद्र सरकार भली भांति समझती है और देश के नागरिकों के चहुंमुखी, सर्वव्यापी एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में पहल करते हुए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को संसद में पेश बजट में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम निर्णय लिए ताकि भारत को ग्लोबल नॉलेज का सुपर पावर बनाया जा सके। इसके अलावा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरे किए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। हर साल न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाया जा रहा है बल्कि जो प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं या अटके हैं उन्हें समय पर पूरा कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति प्लेटफॉर्म से खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं जो हमारी जीडीपी का 3.4% है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कैंसर मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत दी है। बजट में कैंसर की 3 दवाओं ट्रेस्टुजुबैन, डेरेक्सटेकन, ओसीमर्टिनिब और डुरवालुमैब को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। देश में 27 लाख कैंसर रोगियों को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आग्रह पर वित्त मंत्रालय ने इन दवाओं को सस्ती दरों पर कैंसर मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए सीमा शुल्क से छूट दी है।
पूर्वोत्तर भारत देश के नए युग के आर्थिक विकास के लिए अष्टलक्ष्मी के तौर पर अपनी क्षमताओं को हासिल करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति देने के वास्ते इस साल के पूर्ण बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। वहीं भारत सतत विकास लक्ष्य यानी SDG को ध्यान में रखकर पर्यावरण संरक्षण और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए फरवरी में पेश अंतरिम बजट में उपलब्धता, पहुंच और किफायत के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ उच्च तथा कुशल आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने की रणनीति केंद्र सरकार ने घोषित की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट की 6वीं प्राथमिकता में शामिल ऊर्जा सुरक्षा के तहत सरकार ने समुचित ऊर्जा परिवर्तन पथ के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने की घोषणा की है जो रोजगार, विकास और पर्यावरण स्थायित्व की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं।
साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे।
एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत बनाने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पिछले 10 सालों में नए सिरे से प्रयास किए गए हैं। सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के काम अभूतपूर्व रफ्तार और जोश के साथ किए गए। इन पहलों को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940,85,00,000 यानी लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों से सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की वर्षों पुरानी मांग को स्वीकार कर दोनों प्रदेशों के साथ न्याय किया है, जिसका बिहार की जनता दशकों से जबकि आंध्र प्रदेश के लोग प्रदेश गठन के बाद से ही इंतजार कर रहे थे। इन दोनों राज्यों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बजट में की गई घोषणा से इन दोनों प्रदेशों में एक्सप्रेसवे, ऊर्जा की जरूरत, सिंचाई की व्यवस्था, बाढ़ से बचाव, पर्यटन का विकास, मेडिकल कॉलेज से लेकर औद्योगिक विकास तक को रफ्तार मिलेगी।
केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर विकास केंद्र के रूप में शहरों को विकसित करना चाहती है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश के ठोस विकास और उसे व्यापक समृद्धि की ओर ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता वाला बजट पेश किया है। इसमें आवास, किराए के आवास की सुविधा, शहर की योजना, जलापूर्ति, स्वच्छता और रेहड़ी पटरी वालों को सहायता के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। बजट में कहा गया है कि आर्थिक आवागमन की योजना और टाउन प्लानिंग स्कीम का उपयोग कर शहरों के आसपास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा संसद में पेश बजट में बेसिक अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध कोष की स्थापना सहित कई प्रावधान भी किए गए हैं। साथ ही भविष्य का भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को गति देने वाले प्रौद्योगिकी बिजनेस करने में आसानी और बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 और राज्यों को व्यवसाय सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इतना ही नहीं, डेटा प्रबंधन और शासन को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्रवार डेटाबेस तैयार होगा। साथ ही इस बार के बजट में भी भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास की बात की गई है। इससे न केवल रोजगार सृजन के अवसर बनेंगे बल्कि निवेश को प्रेरित करने और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर भी खुलेंगे।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। कल भी हम इस अंक पर परिचर्चा को रखेंगे जारी और इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि सुनना चाहें आप हमारा ये अंक दोबारा, तो सुनिए हमें हमारी वेबसाइट पर, जो है newsonair.gov.in। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है और इसका ट्विटर हैंडल है @NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहेगा आपके सुझावों का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR NSDTalks@gmail.com।